ठेवला पुस्तक आठवी लेक्चर नंबर 9 ओ नमः सिद्धेश
ओ नमः सिद्धेश
ओ नमः सिद्धेश ओ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहुणं
पणमेयनिसङ्कमणो
पच्चुहसमुद्दसङ्कमे दिनचलने बन्धगमहारियारम् यह श्री भीमसेन आचार्य रचित जय धोला टीका है, जो कषाय पहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। आठवीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें संक्रमण की बात चल रही है। हम पृष्ठ संख्या 59 पर आगे 59 यहाँ हमारा विषय स्पर्शनानुगम का चल रहा है। नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही थी। क्षेत्र के बाद हमने स्पर्शन देखा ओग में और फिर आदेश में भी देख लिया था। अब उसमें देवों में बात चलेगी। 59 पृष्ठ सेकंड लाइन देवों में मिथ्या तो के
तीरियंच चला रहे हैं।
हाँ, वो तीरियंच कहाँ तक उत्पन्न होते हैं ये बात अपनी कल निकली थी।
12वीं
हाँ, अरविंद भाई ने लिख कर लाया भवनवासी से लेकर सहस्रार तक स्वर्गों में पहले गुणस्थान वाले मिथ्या दृष्टि तीरियंच तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त भवनवासी से लेकर सहस्रार तक
और चौथे वाले 16वें तक
और दूसरे गुणस्थान वाले वही सहस्रार तक और तीर्यंच दूसरे गुणस्थान और चौथे पांचवे वाले सौधर्म से अच्युत तक असंख्यात आयु वाले तो मिथ्या दृष्टि वाले भवनत्रिक में जाते हैं और फिर दूसरे गुणस्थान वाले भी भवनत्रिक में और चौथे वाले सौधर्म द्विक में जाते हैं सौधर्म युगल में। अब यहाँ संक्रामक और असंक्रामक की बात चलेगी, आदेश में चलेगी, देवगति में बात करेंगे। तो यहाँ देवगति में तो चार गुणस्थान है, तो मिथ्यात्व के संक्रामक कौन है? समय दृष्टि है। तो देवों का रहने का ठिकाना यहाँ बताएंगे। तो वर्तमान का क्षेत्र लोक का असंख्यात्व भाग और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। कुछ कम 8 क्यों? बिहार वाले
मिथ्यात्व के संक्रमक तो सातवें अरे सौधर्म अरे सर्वार्थ सिद्धि वाले भी है तो 9 नहीं दिया। अच्छा, वो विहार की अपेक्षा नहीं है?
यहाँ विहार की अपेक्षा नहीं है, वो तो अपने अपने जगह रहते हैं। ग्रेवेग से लेकर ऊपर के विहार नहीं करते हैं। शेष प्रकृतियों के संक्रामकों ने और 3 दर्शन मुनि के असंक्रामकों ने लोक के असंख्यात विभाग और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 तथा कुछ कम 9 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। असंक्रामकों में 9 भाग लिया किसके? दर्शन मुनि के असंक्रामक। देखो, वो दूसरे गुणस्थान में भी होते हैं ना, तो दूसरे गुणस्थान में असंक्रामक है और तब मारणांतिक समुदाय करे तो 9 भाग प्रमाण क्षेत्र हो सकता है। नीचे 2 राजू गए और वहां से मारणांतिक के ऊपर की पृथ्वी में तो नौ राजु क्षेत्र होता है तो 9/14 हो जाता है। ये बात ख्याल में आई मंजूताई? 9 कैसे होता है? दर्शन मोनी के असंक्रामक लिए, तो दूसरे तीसरे गुणस्थान में असंक्रामक होते हैं दर्शन मोनी के, तीसरे में तो मरण नहीं है, मारणांतिक भी नहीं है, तो दूसरे गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में आया है, असंक्रामक रहा तो नीचे पृथ्वी भी गया तीसरे नरक तक, वहां से मारणांतिक किया आठवीं पृथ्वी में ईषद प्राग भर में, तो उसकी अपेक्षा 9/14 राजु घटित होता है। अनंतानुबंधी चतुष्क के असंक्रामकों ने लोक के असंख्यात विभाग, ये असंक्रामक कौन है? तो ये तो सम्यक दृष्टि है, ये जो अभी भी
पीछे योद्धा कर रहे आउली के
संयोजना की है आउली में, और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। अनंतानुबंधी के असंक्रामक कौन है? विसंयोजना में आउली में प्रवेश किया है। आउली का प्रवेश ख्याल में आया थी बात, विसंयोजना जब कर रहा था तो विसंयोजना ने अन्य प्रकृति रूप टर्न होता था, वो तो कांडकों में होता था,
कंप्लीट हो गया।
जब कांडक घात रुक जाता है और आवली प्रमाण काल बाकी है, निषेक तो एक समय का मावली है और काल उसका आवली प्रमाण है,
और संयोजन
तो उसमें सत्ता होते हुए भी संक्रमण नहीं है, उसको असंक्रामक कहा।
और संयोजना के काल में भी एक
फिर संयोजना जब होती है तो नया बंध शुरू होता है, सत्ता तो है वहां पर। अन्य प्रकृति इस रूप संक्रमित भले होवे, परंतु ये जो नया बंधा हुआ अनंतानुबंधी है या जो संक्रमित हुआ अनंतानुबंधी है, आवली काल तक उसका अन्य रूप से संक्रमण नहीं होगा, तो वहां पर भी उसको आवली, पूरी आवली प्रमाण, वो असंक्रामक कहलाएगा। तो ऐसे जो देव में असंक्रामक है अनंतानुबंधी के, वो लोक के असंख्यात विभाग यानी अपने अपने जगह में त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है, वो भी वहीं पर समझना। इसी प्रकार भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है अपना अपना स्पर्श कहना चाहिए।
यह भी लोक का असंख्यात विभाग और
क्या कहते हैं,
स्वस्थान की अपेक्षा लोक का असंख्यात भाग हो जाएगा,
इन्हें व्यंतर भुगन में हाँ। तो व्यंतर भवनवासी ज्योतिषी में भी ऐसा ही विशेषता हाँ। क्या है अपना अपना स्पर्श है, क्या कहाँ तक जा सकते हैं?
वो भी उत्पन्न तो एक ही जीव में हो सकते हैं ना, मारणांतिक करेंगे
हाँ, वो तो यही ऐसा भी घटित होगा उनमें
हाँ।
अपना अपना एवडा इतना है कि अपने स्वयं से विहार करेंगे तो कहाँ तक, और पर के साथ करेंगे तो कहाँ, तो नीचे 2 राजो ऊपर 1.5 राजो स्वयं विहार करके जाए, इसलिए अपना अपना अलग बताया उन्होंने। बहुनत्रिक स्वयं विहार करके जाए तो ऊपर स्वधर्म विमान तक जा सकते हैं, 1.5 राजो ऊपर
और नीचे 2 राजो,
नीचे 2 राजो,
3.5 राजो,
3.5 राजो टोटल हाँ। और अन्य देवों के साथ 16वें स्वर्ग तक जा सकते, सौधर्म और ऐशान कल्प में सामान्य देवों के समान स्पर्श है। सामान्य देव क्यों? सामान्य देव में जो 9/14 यहाँ घटित किया है वो सामान्य देव में ही होता है, और वो सौधर्म द्वीप और भवनत्री की अपेक्षा बताए, क्योंकि ऊपर के देवों में
एकेंद्रीय में
उत्पन्न एकेंद्रीय प्रकृति बांधता ही नहीं, वो तो उसमें उत्पन्न होने का सवाल नहीं। कौन से जीव कौन से प्रकृतियों को बांधते हैं ये भी नियम है, इसलिए सौधर्मद्विक और भवनत्रिक वही एकेंद्रिय संबंधी, वो भी बादर पर्याप्त एकेंद्रिय का बंध कर सकते हैं, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त का बंध तो वे भी नहीं करते। यानी कोई ऐसा मानते देव में गया और वहां से निगोद गया तो ऐसा कभी नहीं होगा हाँ। कालांतर में जा सकता है वायु तेज में तो जाते ही नहीं, उसकी तो प्रकृति
खाली पृथ्वी का एक की अपेक्षा है हम लोग देखते हैं,
पृथ्वी जल और वनस्पति वो भी बादर और पर्याप्त। इसलिए कहते सौधर्म और ऐशान कल्प में सामान्य देवों के समान स्पर्श है। सनत कुमार से लेकर सहस्रार सहस्रार हुआ है, सहस्रार चाहिए, सहस्रार कल्प तक किया बराबर, सनत कुमार से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में 28 प्रकृतियों के संक्रामकों ने तथा 3 दर्शन मोनिय और अनंतानुबंधी चतुष्क के असंक्रामकों ने लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। ये यहाँ सहस्रार तक ही क्यों लिया, उसके ऊपर का स्वर्ग का नाम क्या है?
आनंद
प्राण तारण। अभी इनको तो 8 राजु क्षेत्र विहार की अपेक्षा बताया, क्योंकि नीचे तीसरे नरक तक जाते हैं और ऊपर 6 राजु ऊपर, यानी 8 राजु होता है। परंतु आनंद आदि जो गमन तो करते हैं,
विहार नहीं करते,
परंतु मध्य लोक तक करते हैं। ग्रेवेक तो विहार ही नहीं करेंगे, वो तो अपने क्षेत्र में रहेंगे, तो उनके तो 6 राजु घटित करेंगे। इसलिए यहाँ पर सहस्रार तक के लिए आनंद से लेकर अच्युत कल्प तक, अभी इसको अलग निकाला, ग्रेवेक को भी इसमें नहीं मिला है, क्योंकि ग्रेवेक तो अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं, वो यहाँ भी नहीं आएंगे। तो आनंद से लेकर अच्युत कल्प तक के देवों में 28 प्रकृतियों के संक्रामकों ने तथा 3 दर्शन मुनि और अनंतानुबंधी चतुष्क के असंक्रामकों ने लोक के असंख्यातवे भाग और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग, ये 6 भाग लिखने का प्रयोजन, वो मध्यलोक से नीचे गमन नहीं करते, मध्यलोक में तो आते हैं, क्षेत्र का स्पर्श किया है। अच्युत स्वर्ग से ऊपर स्पर्श क्षेत्र के समान है, यानी लोक का असंख्यात भाग, क्योंकि वे विहार नहीं करते हैं।
या 3 दर्शन में होती असंक्रामक के लिए संक्रामक को भी लिए,
संक्रामक को तो बताया है, और यहाँ तो उच्चारणाचार्य बता रहे, इसलिए संक्रामक असंक्रामक दोनों ले रहे हैं आदेश में। इसी प्रकार अनाहारकों तक जानना चाहिए, इसका अर्थ है हरेक मार्गणा में सोचकर उसको निकालना चाहिए। अब नाना जीवों की अपेक्षा काल का अधिकार है, नंबर कितना आया? 20। क्षेत्र हुआ, स्पर्शन हुआ। नाना जीवों की अपेक्षा पहले हमने बंग विषय देखा, भागा भाग देखा, परिमाण देखा, फिर क्षेत्र और स्पर्शन है ना? अभी काल, नाना जीवों की अपेक्षा काल जब कहते हैं तो वो करने वाले जीव है क्या नहीं है, अनेक जीवों की अपेक्षा, इतना ही देखना है। तो अनुयोग नंबर 20 ऊपर सूत्र, नाना जीवे ही कालो। अब नाना जीवों की अपेक्षा काल का अधिकार है, यह सूत्र सुगम है, क्योंकि इस द्वारा केवल अधिकार की संभाल की गई है। कौन सा यहाँ अधिकार चैप्टर शुरू हुआ है उसको बताया, सौव कम्माणम संकामया केवचिरम कालादो होंती। सब कर्मों के संक्रामक जीवों का कितना काल है, नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है, हाँ क्वेश्चन मार्क ऊपर तो है नीचे नहीं है, हाँ। यह सूत्र भी सुगम है, यानी वो प्रश्न समझ में आवे ऐसा है, तो उसका उत्तर कहते हैं सर्वदा, यानी सर्वदा काल है, फुल स्टॉप देना यहाँ पर। अभी क्योंकि संक्रमण करने वाले कोई ना कोई जीव होगे, क्योंकि मिथ्यात्व का संक्रमण करने वाले कौन है, सम्यक दृष्टि, वो हमेशा ही होगे। सम्यक्त्व का संक्रमण करने वाले
मिथ्यादृष्टि,
वो भी हमेशा होगे, संक्रमण करने वाले यानी उद्वेलना करने वाले, सम्यक मिथ्यात्व के भी होगे, वो तो दोनों जगह करता रहता है। अनंतानुबंधी के
संक्रामक तो है, हमेशा
संक्रामक तो सभी, अभी असंक्रामक है कि नहीं है उसकी बात बाद में। सर्वदा काल है, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा सब कर्मों के संक्रम करने वाले जीवों के प्रवाह का कभी भी विच्छेद नहीं देखा जाता है। जीवों के प्रवाह का ना कोई वो करने वाले वहां होगे ही होगे। यतः यह सूत्र देशामर्शक है। अतः, यतः का अर्थ होता है क्योंकि, और अतः है ना इसलिए, है ना, ये तो संस्कृत मूल शब्द है कि यतः यह सूत्र देशामर्शक है। इस सूत्र से अन्य भी अर्थ गर्भित है, वो निकाल के अभी हमको खोल के बताएंगे। अतः इससे सूचित होने वाले अशेष अर्थ का कथन करने के लिए उच्चारणा को बतलाते हैं। उच्चारणाचार्य ने इसी में से वो अर्थ और खोल कर बताया। यथा कालानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। ओघ से ओ बराबर करना, ओग से 28 प्रकृतियों के संक्रामक जीवों का कितना काल है। नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है तो कहते हैं सब काल है। पहले हमने एक जीव की अपेक्षा देखा था, फिर एक जीव की अपेक्षा जगण्य कितना है, उत्कृष्ट कितना है, उसको हमने देखा। जैसे मिथ्यात्व का जगण्य होगा अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट जब तक वो समय दृष्टि रहा, इस तरह से हमने देखा था। अब यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा कोई ना कोई जीव तो सम्यक्त्व में है ही और वो मिथ्यात्व का संक्रमण करने वाले हो गए तो कहते सब काल है। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के असंक्रामक, अभी संक्रामक तो सभी है, अभी असंक्रामकों की बात नाना जीवों की अपेक्षा चल रही है। मिथ्यात्व के असंक्रामक कौन है?
मिथ्या दृष्टि
और सासाधन वाले और तीसरे वाले। और सम्यक्त्व के असंक्रामक कौन है?
सम्यक दृष्टि
और फिर दूसरे तीसरे वाले तो है। तो इसलिए कहते मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के असंक्रामक जीवों का सब काल है। यानी मिथ्यात्व के असंक्रामक मिथ्यात्व वाले है और सम्यक प्रकृति के असंक्रामक सम्यक दृष्टि है, वे तो हमेशा ही पाए जाएंगे, इसलिए असंक्रामकों को सर्वदा काल कहा। बात ख्याल में आई? अब सम्यक मिथ्यात्व के असंक्रामक जीवों का जघन्य काल एक समय है, सासाधन्य। बहुत अच्छा, क्योंकि सम्यक दृष्टि भी है मिथ्या दृष्टि भी हमेशा पाए जाते हैं और वहां तो सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण चलता है। तो सम्यक मिथ्यात्व के असंक्रामक कौन है? तो दूसरे तीसरे गुणस्थान वाले। परंतु तीसरे गुणस्थान का काल तो अंतर्मूर्त है, हमें जघन्य काल चाहिए। तो कोई समय दृष्टि दूसरे गुणस्थान में आ गया, पहले वो संक्रमण कर रहा था, अब वो असंक्रामक हुआ दूसरे गुणस्थान में। हाँ, एक समय के बाद मर गया मिथ्या तो में गया। मिथ्या तो में भी है, क्यों मारते हो उसको? हाँ। एक ही जीव की बात नहीं है, जितने कोई जीव एक हो या दस हो, हाँ। एक साथ वो सासाधन में आए हैं, अब वो मिथ्यात्व में चले गए, दूसरे समय में कोई वहाँ नहीं आया, ये बात ख्याल में रखनी चाहिए।
ये तो मरण की अपेक्षा तो सासाधन में मरेगा तो सासाधन में ही रहेगा। सासाधन में मरण होगा तो सासाधन में रहेगा।
हाँ। तो सासाधन में मरेगा तो सासाधन में ही रहेगा। हाँ। आपकी बात सही है। हाँ। तो हम नाना जीवन की अपेक्षा बात कर रहे हैं, तो ऐसा लेना सासाधन में एक समय तक ही रहे, एक हो या अनेक हो, मिथ्यात्व में चले गए
और बाकी पीछे कोई जीव
है, फिर दूसरे समय में वहाँ कोई भी जीव नहीं सासाधन में आया, क्योंकि ये शांतर मार्गण है, इसलिए वहाँ एक समय घटित होगा। ये
मरण है, पर
मरण होके दूसरे गति में जाएगा तो भी सासाधन रहेगा, ऐसा इनका कहना है। हाँ, सासाधन में आया
एक समय
तो नेक्स्ट टाइम मिथ्यात्व में गए ना वो। हाँ, मरे नहीं मरे।
हाँ, मरण की अपेक्षा बाकी नहीं है यहाँ पे, एक समय के लिए
मरण कहने की जरूरत नहीं है, बस उसका सासाधन पलटना चाहिए। अनंतानुबंधी चतुष्क के सम्यक मिथ्यात्व की बात ख्याल में आई? प्रतिभा अनंतानुबंधी चतुष्क के। अभी संक्रामक कौन है? समय दृष्टि भी और
मिथ्या
दृष्टि भी सर्वदा होते, वो तो देख लिया हमने। उनके असंक्रामक जीवों का जघन्य काल
एक समय कम
एक आवली है।
यहाँ पे मरण नहीं।
असंक्रामक कौन है?
जो विषयोद्धा कर रहे हैं,
करते करते आवली काल बाकी है और उसके निषेकों की संख्या एक समय कम आवली। तो जो उसमें आया है एक हो या दस जीव हो, तो वो तो उतने काल तक असंक्रामक रहेगा ही, यानी उसकी सत्ता है और संक्रमण नहीं कर रहा है। तो उसका जघन्य काल एक समय कम आवली का, नाना जीवों की अपेक्षा। तथा इन दोनों के असंक्रामक जीवों का, दोनों के ने सम्यक मिथ्यात्व के भी, अभी हम अनंतानुबंधी की सोचते हैं क्योंकि दोनों को एक साथ से फिर कंफ्यूजन नहीं चाहिए
वहां पे, तो शांतर मार्ग।
अभी अनंतानुबंधी के असंक्रामक का उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है। इसका अर्थ क्या है?
पल्ले के असंख्यात विभाग तक कोई विषय योजना नहीं करेगा या संयोजना नहीं, इसे ले सकते
हैं? नहीं, देखो असंक्रामक कब होते
लगातार
असंक्रामक कौन होते हैं?
विषय योजना करते हैं और संयोजना करते हैं, एक कावलित काल
या संयोजना वाले। ऐसे एक जीव ने किया, फिर उसके बाद दूसरे ने किया तत्काल, उसके बाद तीसरे ने, ऐसे एक जीव के लिए एक आवली काल ले लो।
हाँ, तो आवली का संख्या से भाग,
आवली के असंख्या से भाग प्रमाण
जीव के काल
पल्ले
का संख्या से भाग प्रमाण,
तो पल्ले का संख्या का भाग होगा। दोनों लेना है, संयोजना वाले भी और विसंयोजना वाले भी। इसलिए अनंतानुबंधी के लिए नाना जीवों की अपेक्षा असंक्रामकों, यानी दोनों ही असंक्रामक है, दोनों ही करने चाहिए, ऐसी बात नहीं। विसंयोजना करते हुए अंतिम आवली में प्रवेश किया तब भी असंक्रामक है, जब संयोजना हो जाती है तो नया बंध शुरू होता है, तो बंधावली में संक्रमण नहीं होता, तो वहां भी आवली काल तक, वहां तो एक समय कम आवली है और यहाँ तो पूरी आवली है। तो कोई जीव ऐसे होगे, कोई ऐसे होगे, तो निरंतर चलता रहे एक के बाद
पल्ले का संख्या,
एक क्रम से एक एक जीव करता रहे, उसको वो पूरा होने के पहले दूसरे ने कर दिया, तो पल्ले का असंख्यात्व भाग काल होगा। अब हम सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा देखेंगे। सम्यक मिथ्यात्व के असंक्रामकों का उत्कृष्ट काल नाना जीवों की अपेक्षा। असंक्रामक कब होते थे?
दूसरे
और तीसरे में। दूसरे का काल तो एक समय से छह अवली है और तीसरे गुणस्थान का काल अंतर्मुहूर्त है, उसमें भी जगन्य उत्कृष्ट, जो उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त लेंगे हम, तो कोई जीव तीसरे में आया, वो तीसरे से आगे चले जाने के पहले पहले फिर दूसरा आया। एक जीव के लिए अंतर्मुहूर्त,
तो
एक के बाद आएंगे तो अवली का संख्या के भाग प्रमाण जीव आएंगे,
तो
पल्ले का असंख्यात भाग होता है। यह हमने जब काल प्ररूपणा देखी थी पहले, नाना जीवों की अपेक्षा तीसरे गुणस्थान का काल कितना है, तो पल्ले का असंख्यात भाग, फिर अंतर पड़ेगा ही पड़ेगा। सासादन का भी हमने देखा था, नाना जीवों की अपेक्षा दूसरे गुणस्थान का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल
पल्ले
का असंख्यात भाग, वो यहाँ घटित करना बात ख्याल में, तब वो सम्यक मिथ्यात्व का असंक्रामक है। दोनों के लिए अलग अलग पोजीशन पर उसके असंक्रामक है, फिर भी काल कितना है अधिक से अधिक? पल्ले का असंख्यात्व का। बारह कषाय और नौ कषायों के संक्रामक तो सभी है, यहाँ बात असंक्रामकों की हो रही है। असंक्रामकों का जघन्य काल एक समय है। जघन्य काल एक समय कैसे? हमने एक जीव की अपेक्षा भी एक समय घटित किया था,
उपशम ने कर दी और एक समय
उपशम श्रेणी में आया है। जिस प्रकृति की बात करते हैं उसकी उपशमना की
और एक समय
संक्रमण वगैरह रुक गया है, एक समय तक असंक्रामक रहा, फिर मरकर देव में गया, फिर संक्रमण शुरू किया। अब यहाँ नाना जीव है, एक जीव हो या 10-15 जीव हो, एक साथ उन्होंने उपशम श्रेणी मान ली है, एक समय के लिए असंक्रामक होकर मरकर देव हुए, तो एक समय जघन्य घटित होता है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। हमने देखा था ना, एक जीव की अपेक्षा भी अंतर्मुहूर्त होता है, अब एक के बाद एक के बाद एक के बाद कोई उपशम श्रेणी मानता रहे तो भी कितने हो गए, संख्या थी जीव मान लेंगे, तो संख्या अंतर्मूर्त भी अंतर्मूर्त ही कहलाता है। इसलिए वहां भी अधिक से अधिक काल भी नाना जीव की अपेक्षा अंतर्मूर्त होगा। इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है, अभी जो हमने उपशम श्रेणी में घटित किया था वो अन्य तीन गतियों में नहीं होगा, मनुष्य गति में ही
असंक्रामक हो
गया। हाँ, असंक्रामक हो गया उसके। इसलिए कहते किंतु इतनी विशेषता है, देखो जब यहाँ लिखा ना इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए, ये हुआ आदेश का कथन। पहले अभी तक जो हमने देखा था वो ओघ से कथन था, इसी प्रकार चारों गतियों में अभी गति मार्गणा की अपेक्षा बता रहे। किंतु इतनी विशेषता है कि मनुष्य गति के सिवा शेष गतियों में 12 कषाय और 9 कषायों के असंक्रामक जीव नहीं होते। किंतु इनमें अनंतानुबंधी चतुष्क के असंक्रामक जीवों का जघन्य काल एक समय है। अभी ऊपर कितना देखा था,
आवली माइनस एक समय और
आवली माइनस एक समय। अभी इनमें का अर्थ क्या है और एक समय का अर्थ क्या है, कैसे घटित करना, लक्ष्मी बहन आप कहेंगे? हाँ हाँ, इनमें का अर्थ क्या है मनुष्य गति में?
मनुष्य गति के सिवा ना,
इनमें का अर्थ है चारों गति में।
यहाँ पे अनंतानुबंधी का एक समय,
देखो इनमें अनंतानुबंधी चतुष्क के असंक्रामक जीवों का जघन्य काल एक समय है।
ये कैसे घटित होगा? नहीं नहीं तो फिर
देखो
अनंतानुबंधी के समय में तो मरण नहीं है।
अनंतानुबंधी का विसर्जन किया, दूसरे गुणस्थान में आया।
हाँ,
दूसरे गुणस्थान में आवली तक तो
नहीं, पर तो भी उसका काल तो आवली माइनस एक समय तो होगा ही ना, असंक्रामक का।
असंक्रामक का पूरी आवली है, एक समय नहीं कम करना।
हाँ, आवली है तो यहाँ पे एक समय कैसे लिया?
एक समय क्योंकि शासादन में मरण हो सकता है।
पर शासादन में मरण करेगा तो भी दया बंद होगा उसका, तो संक्रमण तो होगा नहीं।
वही तो असंक्रामक का ही एक समय घटित करना है हमको।
तो एक गति की अपेक्षा कर रहे हैं कि चारों गति भी एक कंटिन्यूस सभी गति लेगी?
यहाँ अभी आदेश हमने पहले बताया, अभी चारों गतियों की बात शुरू होगी।
अच्छा अच्छा,
इसलिए मैंने पहले कि ऊपर हमने ओघ से देखा, अभी आदेश से बात चलेगी। इसलिए इनमें का अर्थ चारों गतियों में करना, अकेले मनुष्य गति में नहीं। इनमें यानी गति मार्गणा चल रही ना अभी हमारी, यानी गति परिवर्तन होता है तो एक समय घटित होता है। हाँ, छातादन में मरण होता है। और ये शासादन में घटित होगा क्योंकि मिथ्यात्व में अगर जाता है तो एक अंतर्मूर्त तक मरण नहीं होता संयोजना करने वाले के, याद है कि नहीं? विसंयोजना करने वाला शासादन में जाके मर सकता है, परंतु विसंयोजना वाला मिथ्यात्व में जाएगा,
एक
संयोजना चालू करेगा, अंतर्मूर्त तक मरेगा नहीं। इसलिए यहाँ शासादन में ही ले जा सकते हैं और उसका एक समय घटित हो सकता है। देखो परंतु इनमें का अर्थ हमने चारों गतियों में किया क्योंकि गति मार्गणा की बात चल रही है। अनंतानुबंधी चतुष्क के असंक्रामक जीवों का, असंक्रामक क्यों है? अभी वो शासादन में लाना है ना, तो कौन से सम्यक को में पहले ले जाएंगे? औपशमिक सम्यक। औपशमिक समय तो के काल में उसने विसंयोजना की,
शासादन में आ बंद।
अब गिर कर शासादन में आ गया,
बंद शुरू हुआ
और शासादन में
बंद चालू हो गया।
कोई जो कुछ गति थी, चारों गतियों में विसंयोजना तो होती है, तो वहाँ बंद शुरू हुआ यानी सत्ता हुई परंतु संक्रमण नहीं, आवली काल तक संक्रमण नहीं होगा, तो एक समय के लिए असंक्रामक रहा दूसरे समय में संसाधन के साथ अन्य गति में चला गया, तो उस गति में असंक्रामक एक समय तक रहा।
पर ऐसे भी घटित हो सकता है ना कि एक आवली पहले वो संसाधन में आया, अंत में एक समय बाकी रहा तभी मरण हो गया, तो नेक्स्ट
फिर से
एक आवली काल रहा तभी संसाधन में आया।
हाँ।
अभी नया बन चालू होगा और एक समय आवली में, एक आवली में से खाली एक समय बाकी रहा तभी मरण हो गया, तो नेक्स्ट समय में दूसरी गति में जाएगा तो वहाँ पे एक समय के लिए संक्रामक
होगा। हाँ, हो जाए संसाधन के साथ दूसरे गए। क्या कहना चाहते हैं ख्याल में है? आवली काल तक उसका असंक्रामक है, अभी कोई अन्य गति में असंक्रामक था, उसका आवली पूरी होने में एक समय बाकी था, वो किसी अन्य गति में चला गया, तो एक समय के लिए असंक्रामक रहा, फिर मिथ्या तो में चला गया, तो वहाँ संक्रमण शुरू चालू हो गया, वैसा भी होगा, परंतु वो नरक गति में घटित नहीं होगा।
हाँ, नरक गति में
हमें इनमें इन्हें चारों गति में घटित करना था। अच्छा है, ऐसे सोचेंगे तो हम डिराइव कर सकते तीन गति में तो होगा। हाँ। अन्य गति से आने की अपेक्षा भी वहाँ होगी बात। देखो मनुष्य त्रिक में अनंतानुबंधी चतुष्क के असंक्रामक जीवों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। असंक्रामकों की जो भोग में बात देखी थी, भोग में कितना लिखा है देखो ऊपर,
एक आवली लिखा ना,
नहीं एक तो समय कम, एक आवली जघन्य काल था। ओघ में फिर से पढ़ो ऊपर, ओघ में अनंतानुबंधी के असंक्रामक का जघन्य काल एक समय कम एक आवली था, और उत्कृष्ट कितना था, पल्ले के असंख्यात भाग, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा हमने देखा था ना, एक आवली करो या ऐसे लगातार करती जाओ तो पल्ले का असंख्यात भाग काल घटित होगा, नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट काल। अब यहाँ अनंतानुबंधी के असंक्रामकों का नाना जीवों की अपेक्षा मनुष्य में काल घटित कर रहे
हैं,
डिफरेंस ख्याल में है? वहां तो एक जीव के लिए एक आवली, दूसरे जीव के लिए फिर एक आवली, ऐसे करते 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 पल्ले का असंख्यात भाग घटित हुआ। अब यहाँ मनुष्य कोई करेंगे उपशम समय तो प्राप्त करके सासाधन में आएंगे, एक कावली बिताएंगे, उसकी अपेक्षा अगर हम यहाँ घटित करते चले जाएंगे असंक्रामक या विसर्जना वाले भी अगर लेते हैं, तो भी वो कितने जीव करेंगे ऐसा,
संख्यात ही होंगे,
संख्यात करेंगे, इसलिए यहाँ क्या कहते हैं।
सो यहाँ पे तो एक समय तो सांतरुणागत की अपेक्षा भी हो जाएगा, कोई भी गति में एक जीव सासाधन में गया, एक समय काल तक रहा और पीछे मर गया, कोई भी गति में एक समय काल तक वो, अच्छा वो तो पहले गति किया ऐसे होगा।
तो मनुष्य त्रिक में अनंतानुबंधी चतुष्क के असंक्रामक मनुष्य गति में अकेले बात हाँ, कर रहे
हैं, चारों गति में ऐसे हो सकेगा ना कि एक समय
यहाँ संख्यात जीव है।
नहीं नहीं, पर ये सांतर मार्गना है।
कौन सी सांतर मार्गना है?
ये सासाधन वाली, सासाधन सांतर मार्गना है,
सासाधन
तो कोई भी गति में एक जीव ने सासाधन में गया, एक समय में मर गया, तो एक ही समय के लिए उसका जघन्य काल।
अकेले सासाधन में ही असंक्रामक है कि विसर्जना वाले भी है?
नहीं, पर गति की अपेक्षा अभी हम लोग आदेश से देख रहे हैं।
अभी हम आदेश से लेके, तो आदेश में भी वो दोनों जीव होगे कि नहीं होगे?
पर सांतर मार्गना की अपेक्षा अंतर।
अकेले सासाधन को क्यों लेते हैं? सांतरम के लिए अकेले सासाधन आप कंसीडर कर रहे हैं।
हाँ।
परंतु अन्य भी असंक्रामक है कि नहीं, विसंजना करने वाले,
सम्यक मित्रत्व वाले?
अनंतानुबंधी की बात चल रही है।
अनंतानुबंधी की
विसंजना करने वाले भी असंक्रामक,
संयोजना करने वाले भी ले सकते हैं।
हाँ, उन्हीं की बात चल रही है तो। और हमें उत्कृष्ट काल घटित करना है, अभी आप जघन्य की क्यों सोच रहे हो? हमें अधिक से अधिक काल घटित करना
अंतर्मूर्त है।
तो एक जीव के लिए अभी हम आवली लेते हैं, तो कितने जीव करेंगे? संख्यात करेंगे, तो संख्यात आवली ने अंतर्मूर्त ही होगा।
अंतर्मूर्त है।
ये डिफरेंस जगन ने कहा, एक समय अभी हमने जो ऊपर देखा था सासाधन के अन्य गति से आया हुआ हो या उस गति में, क्योंकि तो वहाँ नाना जीवों की अपेक्षा लेनी थी बात, एक समय कम आवली विसर्जना वाले भी लेने थे उसमें, क्योंकि पूरी आवली लेते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, एक समय कम नाना जीवों की अपेक्षा, कोई भी करने लगा तो लगातार करेगा उतने समय तक, ओग में बात अगर हम ऊपर कर रहे थे सासाधन में आया है
नहीं, आवली आवली महीना से एक समय तक तो कंटिन्यूस असंक्रामक ही रहेगा,
वो अन्य भाव
यहाँ पे
भी
मेरा
चला गया,
ऐसा था
तो भी आवली काल तक वो असंक्रामक रहेगा, वो मिथ्या तो में गया तो भी।
मैंने क्यों ऐसे बताया एक समय,
देखो जो सासाधन में भले एक समय बिताए पर सासाधन के बाद मिथ्या तो में गया है
तो
उसकी बंधावली कहाँ पूरी हुई है।
नहीं नहीं, यहाँ पे मैंने क्यों ऐसे बताया, क्योंकि आदेश की अपेक्षा हम लोग गति की अपेक्षा बात करें,
यहाँ गति की अपेक्षा बात कर रहे हैं
तो जगन्य काल एक समय खाली सासाधन में एक समय वाला नहीं घटित होगा, दूसरा भी घटित हो सकता है, सासाधन में आया एक समय रहा और मरण होगा, और वो गति में कोई भी जीव दूसरा जीव सासाधन में है नहीं तो भी एक समय घटित हो जाएगा, ऐसे मेरा कहना था।
तो यहाँ जगन्य काल एक समय घटित कर ही लिया है, हमें जगन्य की बात नहीं,
नहीं अब जगन्य ने ऊपर हमने सासाधन में एक समय की अपेक्षा देखा था, वो खाली एक समय के लिए सासाधन में नहीं रहा, कितने भी समय के लिए सासाधन में आया हो और एक समय में मरण हो गया, छह आवली पहले भी वो
चारों गतियों में तो ऐसा ही घटित होगा एक समय, क्योंकि वहाँ गति परिवर्तन होता है, वो सासाधन में रहे या सासाधन से नित्यात्व में गए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो अभी आया है उसका एक समय बीत गया है, बाद में वो तो आवली काल तक तो
असंक्रामक
रहेगा ही रहेगा, परंतु यहाँ बात किसकी चल रही है, उत्कृष्ट की बात,
वो तो अंतर्मुख घटित हो जाता है
एक समय के लिए, तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो तो चारों गति में वही रूल लागू होता है, अन्य गतियों में लगातार अगर कोई ना कोई करते रहे उत्कृष्ट की बात है, पल्ले का असंख्या तो भाग होगा, परंतु अकेले मनुष्य गति में अगर लेना है
अंतर्मुख लेना
तो अंतर्मुख होगा, क्योंकि ये सासाधन में आने वाले कौन होंगे, पर्याप्त जीव होंगे, ख्याल में आई बात, और पर्याप्त तो वो भी सम्यक दृष्टि, तो उनकी संख्या बहुत कम होगी। अब नीचे से छठी लाइन पढ़ रहे हैं, मनुष्य पर्याप्त मिला और मनुष्यनियों में सम्यक मिथ्यात्व के असंक्रामकों का जघन्य काल एक समय है तथा उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था
सासाधन की अपेक्षा एक
सासाधन की अपेक्षा एक समय घटित होता है, उत्कृष्ट काल ऊपर कितना देखा था हमने,
पल्ले का संख्यात होगा, यहाँ पे अंतर्मूल,
अब यहाँ मनुष्य संख्यात है इसलिए उनका
अंतर्मूल
लगातार सबका काल जोड़ेंगे तो भी अंतर्मूल होगा, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, ये तो मिथ्या दृष्टि ही है सारे, है ना, और अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में 27 प्रकृतियों के संक्रामकों का कितना काल है, सब काल है, जब हमने ओग में बात की थी तो 28 प्रकृतियों के संक्रामक कहे थे, अब यहाँ क्या विशेषता है,
27
पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्त, सारे मिथ्या दृष्टि है, तो किस प्रकृति का संक्रमण नहीं हो रहा है, मिथ्यात्व का, और अनुदिश और अनुत्तर वालों के सम्यक प्रकृति का संक्रमण नहीं है, तो दोनों ही की नंबर ऑफ प्रकृति कितनी है, 27 है, कौन सी प्रकृति असंक्रमित है उसकी बात नहीं लेना, संख्या कितनी है, 27, तो ये 27 वालों कितना काल है, तो सब काल, सर्वार्थ सिद्धि में अनंतानुबंधी चतुष्क के असंक्रामकों का जघन्य काल एक समय कम एक आवली है, क्योंकि कोई असंक्रामक हो जाए अभी वहां की कैसा लेना है, विसंयोजना के लास्ट में जब वो कांडक रुक जाते हैं और एक समय कम आवली प्रमाण निषेक शेष रहते हैं, तो जो कोई करने लगेगा वो तो लगातार उतने काल एक हो जाए या अधिक हो, उसके बाद भले उसमें अंतर पड़ जाए, तो एक या अधिक जीवों ने एक साथ अगर उसमें उद्वेलना करते करते, सॉरी उद्वेलना नहीं, विसंयोजना करते करते वहां तक आ गया है, तो एक समय कम आवली तक वो
असंक्रामक
रहेगी ही, और लगातार एक के बाद आने लगे। कहाँ की बात चल रही है?
सर्वार सिद्धि में,
वहाँ जीव ही संख्यात है और उसमें विसर्जना करने वाले भी और कम संख्यात हो गए, तो उनका कितना काल घटित होगा?
अंतर्मुख,
अंतर्मुख। बात ख्याल में आई? ये बात
यहाँ पे असंक्रामक होगा तो उसका मरण नहीं होगा। यहाँ पे ये जो जीव असंक्रामक हो गया है उसका मरण नहीं होगा।
कहाँ पर?
सर्वार सिद्धि में मरण नहीं होगा, क्योंकि मरण होगा तो एक समय घटित पर जो विसर्जन कर रहा है,
एक समय कभी घटित होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एक समय शासन वाला होता है। यहाँ तो चौथा गुण
शासन में जाएगा नहीं, पर मरण भी नहीं होगा। अंतर
मरण विसर्जन के काल में होता नहीं है,
नहीं है।
और विसर्जन के बाद अंतर्मूर्त भी नहीं होता, यानी आपका कहना कि मरण के समय कोई विसर्जन करेगा तो ऐसा नहीं
होता। वो ही मैं बता रहा हूँ।
आगे बढ़ेंगे मनुष्य अपर्याप्तकों में, नीचे से दूसरी लाइन लास्ट में, मनुष्य अपर्याप्तकों में। अभी ये सांतर मार्गणा है, तिरियंच अपर्याप्त के साथ इसको नहीं लिया है, वो तो निरंतर मार्गणा थी, ये सांतर मार्गणा है। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामकों और असंक्रामकों का जघन्य काल एक समय है। ये मार्गणा का जघन्य काल एक समय है, इसलिए संक्रामक हो या असंक्रामक हो दोनों को लिया। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व के असंक्रामक
मिनिमम काल अंतर्भूत होगा, पर यहाँ असंक्रामक
नहीं, नहीं मुझे इसका कहना है। मार्गणा का एक समय हो तो असंक्रामक की अपेक्षा लेना है, मार्गणा का मिनिमम काल तो एक शुद्र भव होगा। बराबर है, तो यहाँ असंक्रामक कौन है उसकी पहले हम चर्चा करेंगे। प्रेरणा बेन आप कहेंगे मनुष्य अपर्याप्तकों में ये कौन से मिथ्या दृष्टि है, तो उसमें उद्वेलना करने वाले हो गए कि नहीं हो गए? उनको संक्रामक कहेंगे। असंक्रामक किसको कहेंगे? हाँ, जो अवली में प्रवेश करते हैं अंतिम उद्वेलना कांडक के बाद, एक समय कम अवली प्रमाण निषेक बाकी रहते हैं उनके, तो तब उसका संक्रमण नहीं, उसको असंक्रामक कहेंगे। तो उसका जघन्य काल एक समय यहाँ कहा, ये एक समय कैसे आप घटित करेंगे, कौन आप प्रतिभा तय आप बताएंगे? असंक्रामक का जघन्य काल हमें एक समय घटित करना है। हाँ, अवली में प्रवेश किया, पर्याप्त अवस्था। हाँ, अपर्याप्त अवस्था में एक समय में मरण नहीं होता है ना। अच्छा, आप आयु के अंत में उसने उद्वेलना समाप्त की और आवली में प्रवेश करके एक समय
बाकी रहा और
वह अपर्याप्त, हाँ, घटित होता है। और कोई पहले भव में उसने दूसरी पर्याय में वो आवली में प्रवेश कर चुका था और उसका एक निषेक बाकी है, तब मनुष्य अपर्याप्त।
दोनों अपेक्षा,
यानी जन्म की अपेक्षा भी ले सकते हैं,
मरण की अपेक्षा भी ले
सकते, एक समय घटित होगा। संक्रामकों में भी ऐसा ही लेना, संक्रामक एक समय के लिए है, उसका अर्थ क्या है?
अंतिम उद्वेलना कांड,
अभी पहले से करते आया है, अंतिम खाली यहाँ आने पर एक समय के लिए, बाद में वो असंक्रामक हो गया, तभी संक्रामक का एक समय घटित होगा, वो मरण के टाइम नहीं घटित होगा।
नहीं,
वो पूर्व भव से लाना है उसको, अन्य पर्याय से मनुष्य अपर्याप्त में लाना। तो जघन्य काल एक समय है, तथा उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात विभाग करना, यह मार्गणा का उत्कृष्ट काल लेना, एक जीव की अपेक्षा अंतर्मूर्त जो कोई यथा योग्य, और फिर एक के बाद कोई जीव उसमें आते रहे, तो पल्ले का असंख्यात भाग, ये मार्गणा का काल लेना। 16 कषाय और 9 कषायों के संक्रामकों का जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण है। मनुष्य अपर्याप्तकों में सभी जीव इसके
संक्रामक
हो गए ही, क्योंकि असंक्रामक मात्र श्रेणी में होते, उच्चम श्रेणी में। तथा उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है, यही मार्गणा का ही काल लिया उत्कृष्ट काल, नाना जीवन की अपेक्षा उत्कृष्ट काल। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। ये तो चूर्णी सूत्रकार ने तो अच्छा बताया था, सर्वदा काल है सभी का संक्रमण का, तो उसमें असंक्रामकों के जघन्य उत्कृष्ट काल ओग में और मार्गणाओं में उन्होंने बताया। अभी इसी का विशेषार देखते हैं। नाना जीवों की अपेक्षा 28 प्रकृतियों की सत्ता और यथासंभव उनका बंध सदा पाया जाता है। नाना जीवों की अपेक्षा अतः ओग से इन सब प्रकृतियों के संक्रम का काल सर्वदा कहा है, क्योंकि संक्रम के लिए भी हमने बंध की अपेक्षा रखी थी। तो नाना जीव इतने हैं तो कोई ना कोई वो संक्रमण करने वाले हो गए ही, किंतु असंक्रम की अपेक्षा कुछ विशेषता है। बात यह कि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में मिथ्यात्व का संक्रम नहीं होता और सम्यक दृष्टि गुणस्थान में सम्यक्त्व का संक्रम नहीं होता। ये होता बराबर करना, किंतु इन दोनों गुणस्थान वाले जीव सदा पाए जाते हैं। अतः मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के असंक्रामकों का काल भी सर्वदा कहा है, यानी उन दोनों के असंक्रामक तो हमेशा ही रहेंगे। ख्याल में आई बात? अब सम्यक मिथ्यात्व का संक्रम सासाधन और मिश्र गुणस्थान में नहीं होता, मिथ्यात्व में भी होता है सम्यक्त्व में भी होता है, वो सर्वदा यानी संक्रामक तो सर्वदा होते हैं, परंतु असंक्रामक यानी संक्रम कहाँ नहीं होता तो दूसरे तीसरे गुणस्थान में। किंतु नाना जीवों की अपेक्षा से भी सासाधन का जघन्य काल एक समय है, यानी नाना जीवों की अपेक्षा हम सासाधन का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्य का संख्या का, तीसरे गुणस्थान का जघन्य काल नाना जीवों की अपेक्षा अंतर्मुख और उत्कृष्ट काल पल्य का संख्या। अतः सम्यक मिथ्यात्व के असंक्रामकों का जघन्य काल एक समय कहा, ये बात ख्याल में आई? जिन्होंने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है उनके अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना करते समय अंत में एक समय कम एक आवली काल तक अनंतानुबंधी का संक्रम नहीं होता। हमने कहा ना अंतिम विसंयोजना की फाली उसकी पररूप हो गई, एक समय कम आवली विषेक बाकी रहे तो उसका संक्रमण तो रुक गया तो उसको असंक्रामक कहेंगे। यह हमने पहले कंडीशन देखी थी, सत्ता में होते हुए जब संक्रमण नहीं होता उसको असंक्रामक कहा। इसी से अनंतानुबंधी चतुष्क के असंक्रामकों का जघन्य काल एक समय कम एक आवली प्रमाण कहा। नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल, यानी किसी एक या दो चार जीवों ने की और फिर बाद में किसी ने नहीं किया उस आवली काल में तो ये जघन्य काल होगा। सासाधन या सम्यक मिथ्यात्व मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का उत्कृष्ट काल पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। ये नाना जीवों की अपेक्षा है, ये हमारा सारा विवेचन नाना जीवों की अपेक्षा ही चल रहा है। इसी से सम्यक मिथ्यात्व के असंक्रामकों का उत्कृष्ट काल पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा। अब जिन्होंने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना की है ऐसे जीव मिथ्यात्व में या सासाधन में गए और वहां अनंतानुबंधी के संक्रामक होने के पूर्व ही अन्य इसी प्रकार के जीव वहां उत्पन्न हुए। इस प्रकार ऐसे जीव वहां उक्त प्रकार से यदि निरंतर उत्पन्न होते रहे तो पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल तक ही उत्पन्न हो सकते हैं, इससे आगे नहीं। क्या कहते हैं? हमने देखा था विसंयोजना करने वाले जब फिर संयोजना करते हैं कब करते हैं, या तो सासाधन में गए या मिथ्यात्व में गए, कहीं भी जाओ आवली काल तक उनका संक्रमण नहीं होगा। तो उनका संक्रमण शुरू होने के पहले पहले और कोई अन्य असंक्रामक हुआ, फिर और कोई असंक्रामक हुआ, और कोई असंक्रामक हुआ, तो ऐसा लगातार असंक्रामक होते गए तो कितना काल चले जाएंगे, तो पल्ले का संख्या ज्यादा और उसके ज्यादा नहीं। इसी से यहाँ अनंतानुबंधी चतुष्क के असंक्रामकों का उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण का, ये तो ओ की अपेक्षा यहाँ बात चल रही है, अलग अलग गतियों में हम बाद में देखने वाले। बारह कषाय और नौ नौ कषायों के असंक्रामकों का जघन्य काल एक समय उपशम श्रेणी में मरण की अपेक्षा से है, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्रत्येक प्रकृति के उत्कृष्ट उपशम काल की अपेक्षा से कहा है। आशय यह है कि नाना जीवों ने उक्त प्रकृतियों का उपशम किया और जिस समय जिस प्रकृति का उपशम किया उसके दूसरे समय में मरकर उनके देव हो जाने पर उक्त प्रकृतियों के असंक्रम का जघन्य काल एक समय होता है। भले एक जीव हो या ज्यादा हो, उपशम श्रेणी में एक समय वो उपशम करके असंक्रामक हुए और दूसरे समय में मरकर देव हो गए, तो वहां संक्रमण शुरू हुआ। इसी प्रकार निरंतर क्रम से नाना जीवों ने उक्त प्रकृतियों का यदि उपशम किया तो भी उस उपशम काल का जोड़ अंतर्मूल से अधिक नहीं प्राप्त होता। हमने देखा था ना, एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त है, क्योंकि श्रेणी चढ़ के उतरा और फिर संक्रामक हुआ तब काल एक अंतर्मूर्त, एक जीव के लिए एक अंतर्मूर्त, तो संख्या जीवों के लिए भी अंतर्मूर्त। वो अंतर्मूर्त होगा। इसलिए उक्त प्रकृतियों के असंक्रम का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त से अधिक नहीं होता। ये संख्यात जीव है मनुष्य, इसलिए निम्नलिखित कुछ अपवादों को छोड़कर यह ओघ व्यवस्था चारों गतियों में बन जाती है। अब जो जो ओघ का कथन है वो गतियों में भी बनता है, जो नहीं बनता उसको यहाँ कहेंगे। अब कहाँ क्या अपवाद है इनका सकारण उल्लेख करते हैं। हमने वो देखा था ना अनंतानुबंधी का जघन्य काल ओघ में, हमने एक समय का मावली देखा था, अब यहाँ एक समय घटित करके बताया था। उपशम श्रेणी की प्राप्ति मनुष्य गति में ही संभव है, अतः मनुष्य गति के सिवा शेष तीन गतियों में बारह कषाय और नौ नौ कषायों के असंक्रामकों का निषेध किया है। ये एक अपवाद। चारों गतियों में, देखो ये चारों गतियों में ना, हमने वहां इनमें शब्द का अर्थ चारों गतियों में किया था, वो बात सही है ना यहाँ पर। यानी दूसरा अपवाद क्या है कि चारों गतियों में अनंतानुबंधी चतुष्क के असंक्रामकों का जो जघन्य काल एक समय बतलाया है वह गति परिवर्तन की अपेक्षा से बतलाया है। यानी मरकर अन्य गति में चला जाता है तो उस गति में एक समय घटित होता है। उदाहरणार्थ नरक गति में अनंतानुबंधी चतुष्क के असंक्रामक नाना जीव एक समय तक रहे और वे दूसरे समय में मरकर अन्य गति में चले गए, तो नरक गति में अनंतानुबंधी चतुष्क के असंक्रामकों का जघन्य काल एक समय बन जाता है। तो वहां जो मरना है वो सासागन में ही संभव है, मिथ्यात्व में नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व में संक्रामक के अंतर्मूर्त तक मरण नहीं होता। इसी प्रकार शेष तीन गतियों में उक्त काल घटित कर लेना चाहिए, या ऐसे नाना जीव जो एक समय बाद अनंतानुबंधी चतुष्क का संक्रम करेंगे, यानी उत्पन्न होने की भी आपने पूछी थी ना बात, वैसे यहाँ भी हो सकता है, परंतु वो तीन गतियों में घटित होगा। जहाँ जो एक समय बाद अनंतानुबंधी चतुष्क का संक्रम करेंगे, ये कौन है? अभी वो आवली के बाद एक समय में उसका नेक्स्ट आवली पूरे होने के बाद बंधावली है, उसके बाद संक्रमण शुरू होगा। तो बंधावली यहाँ बीत गई और अभी बीत नहीं गई, उसका एक समय बाकी है, अवली का
और मरण हो गया।
बंदावली का एक समय बाकी है, वो अन्य गति में जाके पूरा करेगा। तो एक समय के लिए असंक्रामक और दूसरे समय से संक्रामक। तो जो एक समय बाद अनंतानुबंधी चतुष्क का संक्रम करेंगे, देव मनुष्य तीर्यंचों में उत्पन्न हुए हैं, तो इनकी अपेक्षा भी उक्त एक समय काल प्राप्त होता है, क्योंकि नरक गति में सासाधन वाला उत्पन्न नहीं होता और मिथ्यात्व में जाकर संयोजना करने वाला अंतर्मूल से पहले मरण नहीं होता। ये बार बार सासाधन को क्यों याद किया, जिसके विसंयोजना हुई है और उसके बाद जो मिथ्यात्व में जाता है, बड़े सासाधन में नहीं गया, मिथ्यात्व में गया
अंतर्मूल तक,
तो अंतर्मूर्त तक उसका मरण नहीं है। मैंने हमने पहले ये भी देखा था, उपशम समय उपशम सम्यक के काल में तो मरण होता ही नहीं है, परंतु जो वेदक समय दृष्टि विसंयोजना करेगा
उसका भी अंतर्मूर्त,
उसका भी विसंयोजना के बाद भी अंतर्मूर्त मरण नहीं, और वहां से संयोजना की
तो भी
अंतर्मूर्त तक मरण नहीं। यद्यपि सामान्य मनुष्यों की संख्या असंख्यात है, क्योंकि सामान्य मनुष्य कहते तब पर्याप्त अपर्याप्त दोनों को लेते हैं, पर अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले मनुष्यत्रिक की संख्या संख्यात है। यह मनुष्यत्रिक कौन है? हाँ मंजू ताई, हाँ सामान्य मनुष्य विसंयोजना करने वाले सामान्य मनुष्यों में भी वो पर्याप्त ही लेना है ना? तो पर्याप्त मनुष्य मनुष्य नहीं, और ये सामान्य मनुष्यों में भी करने वाले तो समय दृष्टि है, वो भी संख्यात है। सामान्य मनुष्यों की संख्या असंख्यात है, परंतु विसंयोजना करने वाले सामान्य मनुष्य संख्या, क्योंकि विसंयोजना करने वाले तो पर्याप्त ही जीव है। यदि ऐसे जीव यदि मिथ्यात्व और सासाधन में इस क्रम से उत्पन्न हो, जिससे वहां अनंतानुबंधी चतुष्क के असंक्रामकों का नैरंतर्य निरंतरता, इसको नैरंतर्य कहा, यानी उनकी निरंतरता बनी रहे, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद असंक्रामक उत्पन्न होते रहे, तो ऐसे काल का जोड़ अंतर्मूल से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी संख्या तो संख्यात है, इसलिए लगातार एक के बाद एक आए तो भी वो अंतर्मूल से अधिक नहीं होगा। अतः उक्त तीन प्रकार के मनुष्यों में अनंतानुबंधी चतुष्क के असंक्रामकों का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त का। उत्कृष्ट की बात करनी थी ना, एक के लिए आवली कहेंगे तो संख्यात जीवों के लिए संख्यात आवली होगी। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में सम्यक मिथ्यात्व के असंक्रामकों का जघन्य काल एक समय, पर्याप्त मनुष्य हाँ, तो असंक्रामक यानी वो
सासाधन में एक समय,
सासाधन में एक समय के लिए आया है, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा सासाधन का जघन्य काल एक समय है, और सासाधन या सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त ही प्राप्त होता है। देखो ये नाना जीवों की अपेक्षा मनुष्यों में अंतर्मूर्त है, क्योंकि ये कौन से जीव है सासाधन में आने वाले हैं?
पर्याप्त
जीव है ना, उन्होंने ऊपर बता ही था मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनी की बात उन्होंने बता ही दी थी। तो एक जीव आया सासाधन में, दूसरा आया या समय मिथ्यात्व में भी अगर आता है तो अंतर्मूर्त तक रहेगा उसमें, दूसरा आया फिर वो अंतर्मूर्त में रहेगा, तीसरा आया वो अंतर्मूर्त, तो ऐसे संख्यात ही जीव हो गए, तो उसका भी काल अंतर्मूर्त घटित होगा। सासाधन में भी यही पोजीशन है। देखो जब हम ओग से देखते हैं, नाना जीवों की अपेक्षा ओग से इनका उत्कृष्ट काल पल्ले का संख्या, परंतु मनुष्यों में अंतर्मोह। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों के एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान होने से इनके मिथ्यात्व का संक्रम संभव नहीं, इसलिए वहां 27 प्रकृतियों के संक्रम बताया था, याद है ना? ये विशेषात हम उसी का पढ़ रहे जो हम पहले पढ़ चुके। और अनुदिश से लेकर सर्वान सिद्धि तक के देवों में एक अविरत सम्य दृष्टि गुणस्थान होने से इनके सम्यक्त्व का, वो बराबर लिखना, सम्यक्त्व, वो सब एक साथ जुड़ गया है और यह गायब है। इनके सम्यक्त्व का संक्रम संभव नहीं, क्योंकि वो तो मिथ्या तो अवस्था में ही होता है, उद्वेलना में। इसी से इनके 27 प्रकृतियों के संक्रम का उल्लेख किया है, यानी दो अलग अलग मार्गणा एक साथ बताने का प्रयोजन है, यही है। इनमें भी 27 का संक्रम है, उनमें भी 28 में से इनके मिथ्यात्व को नहीं लिया और उनके सम्यक प्रकृति को नहीं लिया। सर्वार्थ सिद्धि में संख्यात जीव ही होते हैं, अतः वहां अनंतानुबंधी चतुष्क के असंक्रामकों का जघन्य काल एक समय कम एक आवले और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा, क्योंकि एक जीव उसके बाद दूसरे ने विसर्जना की, तीसरे ने की, चौथे ने की, तो लगातार सबका काल अगर गिनेंगे टोटल जोड़ देंगे तो अंतर्मूर्त होगा। देखो अन्यत्र जब हम अनंतानुबंधी को कहते हैं असंक्रामक तो संयोजना वाले जीवों को भी लेते हैं, अब यहाँ तो सारे समय दृष्टि है तो यहाँ असंक्रामक कौन है? तो विसर्जना में जब वो अंतिम आवली में प्रवेश करते तब,
आवली महीना से
मनुष्य अपर्याप्त यह सांतर मार्गना है, इसका जगन्य काल खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण, यानी क्षुद्र भव जिसको हम कहते हैं लब्धि अपर्याप्तक वाला, और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। अतः यहाँ 16 कषाय और 9 कषायों के संक्रामकों का जघन्य और उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा, ये मार्गणा जितना कहा, क्योंकि जो भी उसमें एक भी जीव हो या अनेक भी हो तो वो सारे इन 21 के तो संक्रमण करने वाले ही होते हैं। सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व के संक्रामकों का उत्कृष्ट काल तो पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही है, किंतु जगन्य काल में कुछ विशेषता है। किसके बाद चल रही है? मनुष्य अपर्याप्त, उस मार्गणा का उत्कृष्ट काल पल्ले का असंख्यात्व भाग है, इसलिए उद्वेलना करने वाले भी उतने काल तक पाए जाएंगे, ये तो उत्कृष्ट काल हुआ। अब जगन्य काल की बात बता रहे हैं। जगन्य काल में कुछ विशेषता है, बात यह है कि ऐसे नाना जीव जिन्हें सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के संक्रम में एक समय शेष है, यानी वो अंतिम पाली अभी गिनने वाली है, वे लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों में उत्पन्न हुए और फिर द्वितीयादि समयों में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का संक्रम करने वाले अन्य जीव नहीं उत्पन्न हुए, क्योंकि ये जो उत्पन्न हुए उन्होंने तो संक्रम कर दिया, अब उसके पश्चात वाले समय में जीव उत्पन्न हुए या नहीं हुए उन तो संक्रमण करने वाले कोई नहीं हुए। ऐसे ही होते ना, एक भी जीव नहीं उत्पन्न हुआ, ऐसा भी हो सकता है, या उत्पन्न तो हुए परंतु सम्यक्त्व की सत्ता वाले नहीं थे, ऐसे भी हो सकता है। द्वितीयादि समय में अन्य जीव नहीं उत्पन्न है, ऐसी हालत में मिला नीचे से चौथी पांचवी लाइन, लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों में इन दो प्रकृतियों के संक्रामकों का जघन्य काल एक समय बन जाता है, यानी वो उद्वेलना का अंतिम समय वहां किया उन्होंने अनेक जीवों ने, और दूसरे समय में उद्वेलना करने वाले कोई जीव वहां उत्पन्न नहीं हुआ, या तो उन्होंने उद्वेलना पूरी की थी या वो असंक्रामक थे, जो कुछ है। इसी प्रकार इन दो प्रकृतियों के असंक्रामकों का जघन्य और उत्कृष्ट काल घटित करना चाहिए। वो तो हमने देखा था, जघन्य काल एक समय है क्योंकि असंक्रामक पहले हो चुके थे और यहाँ आने पर असंक्रामक का अंतिम समय हुआ, या उनकी उद्वेलना का अंतिम समय मरण के समय पहले पूरा हुआ, आवली में प्रवेश कर चुके, एक समय बिताकर अन्य भव में चले गए, तब तक दूसरे कोई वहाँ असंक्रामक न हुए, ये बात लेनी चाहिए नाना जीवन की अपेक्षा। और ये सांतर मार्गणा में घटित होती है अच्छी तरह से। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक अपनी अपनी विशेषता को समझकर यथासंभव प्रकृतियों के संक्रामकों और असंक्रामकों का काल कहना चाहिए। यानी हर एक मार्गणा में कितने सम्य दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, उसमें वो दूसरा तीसरा गुणस्थान होता है नहीं होता, ये सब सोचकर हम मार्गणा में लगाएंगे। अब ये दाना जीवन की अपेक्षा काल वाली प्ररूपणा तो यहाँ समाप्त हुई। अब अंतर वाली 21 नंबर है, क्या नंबर है? 21 नंबर, अनियोग नंबर 21। ऊपर सूत्र पढ़ेंगे, नाना जीवे ही अंतरम। अब नाना जीवों की अपेक्षा अंतर काल का अधिकार है। देखो हमने क्या देखा था, 28 प्रकृतियों के तो नाना जीवों की अपेक्षा सर्वदा काल है, तो अंतर कितना होगा?
नहीं होगा,
अंतर होगा नहीं, संक्रामकों में अंतर नहीं होगा। यह सूत्र सुगम है क्योंकि इसका काम एकमात्र अधिकार की संभाल करना है। सव कम्म संकामयाणम नथ्य अंतरम, सब कर्मों के संक्रामकों का अंतरकाल नहीं है। अब उच्चारणा द्वारा इस सूत्र का विवरण करते हैं। यथा अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। ओग से सब प्रकृतियों के संक्रामकों का अंतरकाल नहीं है, इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है। अब ये क्या डिफरेंस है वो बताएंगे। मनुष्य अपर्याप्तकों में ये तो है, तो एक तो सांतर मार्गणा और सारे मिथ्या दृष्टि है। 27 प्रकृतियों के संक्रामकों का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। यहाँ अंतर की बात चल रही है, नाना जीवों की अपेक्षा लब्धि अपर्याप्त मनुष्य नहीं होगे, कहीं भी नहीं होगे, तो एक समय के लिए अंतर पड़ सकता है। और अधिक से अधिक उत्कृष्ट काल तक कोई लब्धि अपर्याप्त मनुष्य न हो ऐसा बन सकता है, वो पल्ले के असंख्यातवे भाग काल तक बनता है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है सर्वत्र यथासंभव असंक्रामकों के अंतर का विचार कर कथन करना चाहिए, क्योंकि सभी प्ररूपणा सप्रतिपक्ष देखी जाती है। यानी जहाँ संक्रामक है, संक्रामक कह रहे हैं, तो वहाँ असंक्रामक भी होंगे, ये प्रतिपक्ष है वहाँ पर। क्योंकि अभी जो उच्चारणाचार्य ने संक्रामकों की बात बताई थी, तो जहाँ जघन्य और उत्कृष्ट काल नाना जीवन की अपेक्षा बताया था, उसका अर्थ है वहाँ जघन्य और उत्कृष्ट अंतर भी हो सकता है। ओग से सब प्रकृतियों के संक्रामकों का सर्वदा सद्भाव होने से इनके अंतरकाल का निषेध किया है। यही बात चारों गतियों में भी जानना चाहिए, किंतु लब्धि अपर्याप्त मनुष्य यह सांतर मार्गणा है और उसका जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। अतः इनमें जिन 27 प्रकृतियों का संक्रम संभव है उनके संक्रामकों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण बतलाया है। इसी प्रकार अपनी अपनी विशेषता को जानकर अन्य मार्गणाओं में अंतरकाल जानना चाहिए, शेष कथन सुगम है। अन्य अन्य मार्गणाओं में अंतर बताना है। देखो ये मार्गणा कैसे भी हम लगाएंगे,
गति मार्गणा में तो
हाँ, गति मार्गणा अगर हम लगाते हैं मनुष्य गति में, नाना जीवों के लिए नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है, तो मनुष्य गति में नाना जीवों की अपेक्षा मिथ्यात्व के असंक्रामक हमेशा रहेंगे, चारों गतियों में हमेशा
रहेंगे,
क्योंकि असंक्रामक कौन है, मिथ्या दृष्टि, तो चारों गतियों में मिथ्या दृष्टि हमेशा रहेगी।
सम्यक तो का असंक्रामक,
सम्यक प्रकृति के असंक्रामक भी चारों गतियों में हमेशा रहेंगे, सम्यक दृष्टि,
सम्यक
मिथ्यात्व के असंक्रामक
नहीं, वो तो दूसरे और तीसरे गुण स्थान
में, दूसरे तीसरे गुण स्थान में होते हैं। अभी
उसका अंतर मार्ग है, एक समय से लेकर पल्ले का असर जाता है,
तो ऐसा वहां सोचना है, असंक्रामक वहां हो सकते हैं, यानी उनमें अंतर हो सकता है। तो ये मार्गणाओं के अंतर हम देखकर उसकी अपेक्षा वहां जो कोई संक्रामक संभव है उसको कह सकते हैं। बहुत हैवी हो गया आज, शेष कथन सुतम, यह अंतर का अधिकार भी यहाँ समाप्त होता है। अभी सन्निकर्ष, अभी ये क्या नया है देखेंगे, सन्निकर्षण एक का जो कुछ संक्रामक है तो दूसरे प्रकृतियों का क्या होगा, उसको सन्निकर्ष कहेंगे। हाँ सांस की बात है, मैंने भी नहीं पढ़ा है ना, अभी पढ़ेंगे क्या कहेंगे। सन्नियासो, अब सन्निकर्ष का अधिकार 22 नंबर ना, अभी अब इसके आगे सन्निकर्ष का विचार करते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओह निर्देश और आदेश निर्देश, उनमें से ओह का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। मिच्छत्तस संकामो, सम्मा मिच्छत्तस सिया संकामो, सिया असंकामो। मिथ्यात्व का संक्रामक कौन होता है,
सम्यक दृष्टि।
सम्यक मिथ्यात्व का कदाचित संक्रामक है और कदाचित असंक्रामक है।
सम्यक मिथ्यात्व का मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, सम्यक दोनों संक्रामक है, खाली दूसरे दूसरे वाले नहीं है।
तब मिथ्यात्व का भी असंक्रामक है, वो मिथ्यात्व का संक्रम करने वाले की बात है। जो मिथ्यात्व का संक्रमण कर रहा है कौन करता है, सम्यक दृष्टि। तो सम्यक मिथ्यात्व का संक्रामक है, ये तो ऑर्डिनरीली सभी सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व का भी संक्रमण करते हैं, सम्यक मिथ्यात्व का भी करते हैं, परंतु ऐसा कौन सा सम्यक दृष्टि है जो मिथ्यात्व का तो संक्रमण कर रहा है परंतु सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण नहीं कर रहा है, ऐसा ही चले ना।
हाँ ऐसा ही लेना है, पर ये हाँ
जो सम्यक दृष्टि है वो मिथ्यात्व का संक्रमण है,
ऐसे तो नियम से है, पर जो
उसके साथ
अवली में
मिथ्यात्व का संक्रमण भी हो सकेगा।
देखो पहले समय में भी हमने देखा था उपशम सम्यक्त के पहले समय में
मिथ्यात्व
का संक्रामक है, सम्यक मिथ्यात्व का नहीं है, जिसकी छोटी वो आवली में प्रवेश कर चुका है ना उद्वेलना करते करते, अभी हम पढ़ेंगे। देखो जिसके मिथ्यात्व की सत्ता उदयावली के भीतर प्रविष्ट नहीं हुई है, ये मिथ्यात्व की सत्ता उदयावली के किसके प्रविष्ट होगी,
शाइक
क्षपणा करने वाले के, शाइक ने के ना क्षपणा, क्षपणा करते करते अंतिम क्षपणा के समय में
नहीं हुई है, उदयावली के भीतर प्रविष्ट नहीं हुई है,
नहीं हुई है, वह वेदक समय दृष्टि जीव तथा सांसाधन के बिना उपशम समय दृष्टि जीव मिथ्यात्व का संक्रामक होता है। पहले में पहले संक्रामक कौन है, क्या सभी समय दृष्टि संक्रामक है, संक्रामक का अर्थ होता है सत्ता होते हुए जो संक्रमण कर रहा है, तो मिथ्यात्व की सत्ता तो है समय दृष्टि के, और वो संक्रमण नहीं कर रहा है, ऐसा कब होगा? आवली में प्रवेश किया हुआ क्षपणा करने वाला उपशम समय तो के तो पहले समय से संक्रमण शुरू होता है।
तो एक ही जगह अपवाद होगा, जो सपना जो मिथ्यात्व की कर चुका है,
कर चुका नहीं, हाँ अच्छा
आवली भी,
हाँ, यानी उसने स्थिति कांड
संक्रमण हो चुका है,
संक्रमण हो चुका है
और आवली में प्रविष्ट हो गया, उसका सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण चल रहा है।
हाँ, हाँ। ये असंक्रामक है, तब यहाँ तो समय, वो तो बात आगे की बाद में करेंगे, मिथ्यात्व का संक्रामक कौन है उसकी बात चल रही है। समय दृष्टि है क्या? सभी समय दृष्टि है
सपना
वाले तो सत्ता ही नहीं, उसकी तो बात ही
नहीं। सपना में जो एक आवली में प्रवेश,
जो आवली में प्रवेश कर चुका है,
उसके मिथ्यात्व तो क्या संक्रमण नहीं हो?
उसके मिथ्यात्व की सत्ता है परंतु संक्रमण नहीं, उस जीव को छोड़ दो।
हाँ।
बाकी सभी मिथ्यात्व के संक्रामक, बाकी सभी समय दृष्टि
मिथ्यात्व
के संक्रामक है, औपशमिक हो या वेदक
हो। वेदक हो,
देखो इस वाक्य को फिर पढ़ती हूँ। मिथ्यात्व के संक्रामक कौन है उसको पहले में पहले बता रहे हैं, उसके साथ सन्निकर्ष तो बाद में लगाएंगे। जिसके मिथ्यात्व की सत्ता उदयावली के भीतर प्रविष्ट नहीं हुई है, ऐसा वह वेदक समय दृष्टि जीव तथा सासाधन के बिना उपशम समय दृष्टि जीव, क्योंकि उपशम समय तो के काल में ही सासाधन होता है ना, तो सासाधन में भी असंक्रामक हो जाता है, इसलिए सासाधन को छोड़कर जो उपशम समय दृष्टि है वो जीव मिथ्यात्व का संक्रमक होता है। पहले स्वामी बताया, नहीं समझे?
समझ गया।
मिथ्यात्व के संक्रमक का स्वामी कौन है वो बात बताए।
सम्यक मिथ्यात्व भी समिथ्यात्व का संक्रमक है ना, सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव।
हाँ।
तीसरे गुणस्थान वाला जीव
मिथ्यात्व का संक्रमक है,
असंक्रामक है, तो उसका यहाँ पे उल्लेख नहीं किया है।
यहाँ असंक्रामक की बात नहीं चल रही थी, कौन सा सम्यक दृष्टि जीव? देखो मिथ्यात्व का संक्रमण कर रहा है, इसकी बात चल रही है,
सम्यक दृष्टि की बात हो रही है,
समय दृष्टि की बात। देखो क्या कहते हैं, यहाँ सन्निकर्ष की बात कर रहे हैं, जो मिथ्यात्व का संक्रमण कर रहा है, क्या वो सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण करता ही है, नहीं भी करता, ये बात चल रही है। तो पहले में पहले ऐसा उस जी स्वामी बताया कि मिथ्यात्व का संक्रमण करने वाले कौन है, तो औपशमिक समय दृष्टि भी है और वेदक समय दृष्टि भी है। क्या सभी वेदक समय दृष्टि है? तो नहीं, दर्शन मुनि की क्षपणा में जिसने मिथ्यात्व की अंतिम फाली किराई है और जो आवली में प्रवेश कर चुका है
वो नहीं,
वो मिथ्यात्व का संक्रामक नहीं है, उसकी बात छोड़ दो। दूसरी बात, प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में जो सासाधन में आ चुका है वो भी संक्रमण नहीं करता, उसको भी छोड़ दो। इनके अलावा बाकी सभी संक्रामक है। अब ऐसे जीवों के सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण होता ही है क्या नहीं भी होता, इसकी चर्चा उसको अभी बताएंगे। तो कहते हैं इसके सम्यक मिथ्यात्व का संक्रम भजनीय है, भजनीय नहीं ऑप्शनल है, ऊपर कहा ना सिया संक्रामक संक्रामो सिया असंक्रामो, कदाचित संक्रामक है कदाचित नहीं है, तो ये कदाचित है या नहीं है उसको बताएंगे। क्योंकि समय दृष्टि के होता है ये तो हमने हमेशा देखा है, परंतु नहीं भी होता ये कब पॉसिबल है?
एक समय
तो कहते हैं प्रथमोपशम सम्यक्त्व के उत्पन्न होने के प्रथम समय में सम्यक मिथ्यात्व का संक्रम न होकर वह अन्यत्र सर्वत्र पाया जाता है, इसके लिए कहेंगे वो कदाचित है कदाचित नहीं भी है।
यहाँ पे भजनीय मीन्स क्या बताया?
ऑप्शनल,
नहीं पर ऑप्शनल
यानी होता भी है नहीं भी।
अच्छा,
होता ऑप्शनल है, होता भी है तो नहीं
सम्यक दृष्टि में होता है भी नहीं।
क्या अन्यत्र सर्वत्र ने जहाँ मिथ्यात्व का संक्रमण चल रहा है ऐसे सम्यक दृष्टियों के सम्यक मिथ्यात्व का भी संक्रमण पाया जाता है, यानी प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व के दूसरे समय से चलेगा उसका भी सासाधन में आने पर नहीं होगा क्योंकि वह मिथ्यात्व का असंक्रामक है। हमें तो संक्रामक रहते हुए सम्यक मिथ्यात्व का संक्रामक है कि नहीं उसको देखना है। अभी जो दर्शन मोनी की जब उदयावली में प्रवेश कर चुका है तब तो वो असंक्रामक है, उसकी बात छोड़ दो। तो उसके अलावा जो जो वेदक समय दृष्टि है वो मिथ्यात्व का भी संक्रमण करता है, समय मिथ्यात्व का भी संक्रमण करता है। ऐसा लेंगे सन्निकर्ष का अर्थ क्या है, एक के होते हुए वो मिथ्यात्व का संक्रामक करता है कि नहीं करता, वो यहाँ का अपना विषय नहीं है।
सन्निकर्ष मिथ्यात्व का क्या होता है,
मिथ्यात्व का जो संक्रामक है
उसमें सम्यक मिथ्यात्व,
वो सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण करता ही है, ऐसा है क्या?
नहीं।
तो कहते दो ऑप्शन है, एक छोड़ना, वो कौन सा?
एक समय वाला।
प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व का पहला समय। ऐसा कोई जीव है कि पहले समय में भी वो संक्रमण करता है?
संवेदक समय में।
प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व के पहले समय में भी
सम्यक
मिथ्यात्व का संक्रमण करने वाला कोई जीव होगा क्या? ये मेरा प्रश्न है, मेरे यहाँ कुछ नहीं।
हा? नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा?
प्रथम ऑप्शन में तो सत्ता ही नहीं है। अच्छा हाँ, एक सागर वाले के सत्ता है।
देखो देखो अभी हमने पहले क्या देखा था, जो उद्वेलना कर रहा है और जिसके अंतिम फाली नहीं गिरी है, यानी उद्वेलना संक्रमण चल रहा है और उसी काल में यानी उसने ऑलरेडी कर्म परिणाम भी मांडे है, तो उसकी अंतिम फाली सम्यक तो प्राप्त करने पर फिरेगी, यानी उद्वेलना संक्रमण भी चलेगा और यहाँ सम्यक दृष्टि भी हो गया। वो सम्यक दृष्टि हुआ तो वो पहले वाला जो संक्रमण था वो हुआ है, अब मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व से सम्यक प्रकृति, वो वाला संक्रमण नहीं हुआ है, परंतु संक्रमण हुआ है। ये हमने पहले देखा था, तब सम्यक मिथ्यात्व के संक्रमण का उत्कृष्ट काल जब देखा था, एक जीव की अपेक्षा पहले पल्ले का असंख्यात भाग, फिर छासर सागर, फिर पल्ले का असंख्यात भाग, फिर छासर सागर, फिर पल्ले का, उससे क्या जाहिर होता है, वो कंटिन्यूस चल रहा है। अब जो मिथ्यात्व का संक्रामक है उसके साथ सम्यक मिथ्यात्व की बात पूछी थी, उसका उत्तर बताया। अब कहते सम्मतस्य असंकामो, यानी जो मिथ्यात्व का संक्रमण कर रहा है वो सम्यक प्रकृति का संक्रमण नहीं करता, वो असंक्रामक है, क्योंकि सम्यक्त्व का तो मात्र मिथ्या दृष्टि संक्रमण करता है, वह सम्यक्त्व का असंक्रामक है, क्योंकि ये दोनों संक्रम एक दूसरे के अभाव में पाए जाते हैं। अभाव में नहीं, जहाँ मिथ्यात्व के संक्रमण का अभाव है वहाँ सम्यक प्रकृति का संक्रमण होता है, और जहाँ इसका संक्रमण चल रहा है वहाँ उसका अभाव है। आशय यह है कि मिथ्यात्व का संक्रम सम्यक दृष्टि जीव के होता है और सम्यक्त्व का संक्रम मिथ्या दृष्टि जीव के होता है, अतः इनका एक साथ पाया जाना संभव नहीं है। इस सूत्र में मिच्छत्तस्य संकामो इस पद का अधिकार वश संबंध कर लेना चाहिए, शेष कथन सुगम है। वह सम्यक्त्व का असंक्रामक है, वह यानी कौन? जो मिथ्यात्व का असंक्रामक है वह सम्यक्त्व का असंक्रामक, तो हर सूत्र में उसका नाम नहीं लेंगे जो मिथ्यात्व का संक्रामक है, क्योंकि अभी उसी का अधिकार चल रहा है। मिथ्यात्व के संक्रामक के साथ अन्य प्रकृतियों की क्या पोजीशन है संक्रमण की, उसको बता रहे हैं। अनंतानुबंधिनम सिया कम्मंसियो सिया अकम्मंसियो, यदि कम्मंसियो सिया असंकामो सिया संकामो सिया असंकामो, क्या कहना चाहते हैं? जो मिथ्यात्व का संक्रामक है ये तो हम कंटिन्यूटी में ले लेंगे, यानी समय दृष्टि है, तो कहते उसके अनंतानुबंधी चतुष्क की कदाचित सत्ता है और कदाचित सत्ता नहीं है। सत्ता नहीं है यानी वो विषययोजना हो चुकी है उसकी, फिर भी मिथ्यात्व का तो संक्रमण चल रहा है। यदि सत्ता है तो, यानी औपशमिक और वैदिक समय दृष्टि है जिसकी सत्ता है, तो वह अनंतानुबंधी चतुष्क का कदाचित संक्रामक है और कदाचित असंक्रामक है। असंक्रामक क्यों कहा?
एक आवली महीने से, अरे
आवली में प्रवेश कर चुका विसंयोजना करते करते, यानी सत्ता तो है पर असंक्रामक है। मिथ्यात्व के संक्रामक के साथ लगा लेना। हाँ। अभी यहाँ वो जब हम जाते
विषयोजना और संयोजना में भी ले सकते हैं ना, क्योंकि सत्ता तो हो जाएगी।
संयोजना में लेते हैं तो मिथ्यात्व का असंक्रामक हो जाता है।
संयोजना में,
संयोजना में मिथ्यात्व का असंक्रामक होता है। अपनी पहली कंडीशन क्या है, मिथ्यात्व का संक्रामक के साथ उनकी क्या पोजीशन है? अभी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, अनंतानुबंधी का असंक्रामक होता है साधन में, मिथ्यात्व में उसकी बात नहीं। मिथ्यात्व का संक्रमण कौन कर रहा है उसी के साथ अभी हमको अप्लाई करना है, तो पहली वो कंडीशन नहीं भूलना। तो मिथ्यात्व का संक्रामक तो सम्यक दृष्टि है, अब उसके असंक्रामक कैसे कहेंगे अनंतानुबंधी का?
एक आवली माइनस,
तो वो आवली में प्रवेश कर चुका है विषयोजना में, इसलिए सत्ता होती भी है नहीं भी होती है। यदि होती है तो उसमें संक्रामक भी है असंक्रामक भी है, दोनों पद्धति से कह दिया। यहाँ भी पूर्ववत अधिकारवश मिच्छत्तस्य संकामो पद का संबंध कर लेना चाहिए, इसलिए यह अर्थ हुआ मिथ्यात्व का संक्रामक जो सम्यक दृष्टि जीव है वह जब तक अनंतानुबंधियों की अनंतानुबंधियों की विसंयोजना नहीं हुई है तब तक उनकी सत्ता वाला है, और अनंतानुबंधियों की विसंयोजना होकर अभाव हो जाने पर उनकी सत्ता से रहित है। अब यदि सत्ता वाला है तो उसके इनका संक्रम भजनीय है, क्योंकि अनंतानुबंधियों की सत्ता आवली के भीतर प्रविष्ट हो जाने पर उनका संक्रम नहीं पाया जाता। ये बात ख्याल में है ना, आवली के भीतर प्रविष्ट होना है ने? वो अंतिम विषयोजना का कांडक पूरा हुआ, संक्रमण हुआ, आवली का संक्रमण रुक गया, किंतु अन्यत्र पाया जाता है। अन्यत्र पाया जाता है ना, जब तक वो आवली में प्रवेश नहीं कर रहा है और जब तक उसकी सत्ता बनी है तब तक उसका संक्रमण चलेगा। तात्पर्य है कि ऐसे जीव के विषयोजना की अंतिम फाली के पतन के समय एक समय कम एक आवली काल तक अनंतानुबंधी का संक्रम नहीं होता। बात ख्याल में आई बात, ये एक जीव की अपेक्षा बात चल रही है, क्योंकि उसके एक प्रकृति के संक्रमण होते होते अन्य प्रकृतियों की क्या पड़ेगा। यहीं रुकते अभी हम। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मन सफन हो सदा देश हो। अच्छा भाई।